तो जजाक अल्लाह खैर साहिल भाई, आपने काफ़ी सिंपल और बेसिक तरीके से इस बार पूरी सूरत को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों के कमेंट्स जो आते थे इस बार आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को अभी भी कोई आप सवाल आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो
अच्छा साहिल साहब, मेरा एक सवाल है।
जी सर,
जो आपने जुल्फ़िकरनैन का जिक्र किया कि पोर्टल के थ्रू उन्होंने टाइम ट्रेवल भी किया, उन्होंने इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल भी किया, और फिर याजूज माजूज का एक्सेस जो है वो इस दुनिया में पोर्टल के थ्रू जो था उसको बंद किया, उसको ब्लॉक किया, उस ज़माने की या किसी भी किस्म की कोई मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी जो कि हम समझ रहे हैं उसको यूज़ करते हुए। तो क्या पोर्टल बंद किया तो इसका ये मतलब है कि तमाम पोर्टल बंद हो गए, और अगर तमाम पोर्टल बंद हो गए तो उसके बाद जो हमें वाकयात मिलते हैं पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करने के, उनकी क्या लॉजिक है?
एक तो अच्छा सवाल है। एक तो हमें ऐसे कोई श्योर तरीके से पता नहीं कि जुल्करनैन का एग्जैक्ट टाइम स्पेंड क्या था। एक बड़ी अमूमी राय है कि ईसा के बाद, असहाबे कहफ का भी वाकया ईसा के बाद हुआ है, और जुल्करनैन जो थे वो भी ईसा के दौर के बाद के हैं। मगर ऐसा कोई उन्होंने भी श्योरिटी से नहीं कहा जिन उलमा कराम ने उनकी टाइम स्पेंड लिखे। दूसरी चीज़, जुल्करनैन ने जो एंट्री टू द प्लैनेट अर्थ की पोर्टल है ना, ये मेरी राय है ऑफ कोर्स, ये बंद की इसलिए कि जाजूज माजूज को अल्लाह ने कहा कि इजाफुत हद जाजूज जवा माजूज, कि जब मैं खोलूंगा याजूज माजूज। तो इसमें ये बात तय है कि याजूज माजूज वाली पोर्टल तो पक्की बंद है, मगर क्या बाकी की पोर्टल्स भी बंद है कि नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सारी पोर्टल्स का जो मेन एंट्री है वो बंद इसलिए की क्योंकि जैसे ही दज्जाल ने अपना ये री एंट्री करनी है, और री एंट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमीमुद्दारी को तो एक दफ़ा मिल चुका है ना, तो पहले तो कहीं तो गया है वो पहले, तो जब उसने री एंट्री करनी है तो साथ ही उस निशानी में याजूज माजूज की निशानी भी है और फिर दाबतुल अर्द की निशानी भी है। इसका मतलब है कि उस वक्त कोई ऐसा निज़ाम ओपन हो गया है कि जिससे बाकी के चीज़ें आना शुरू हो गई, इसलिए मैंने ये राय दी। हालांकि हो सकता है कि दरअसल जुल्करनैन ने सिर्फ एक ही पोर्टल बंद की हो, मगर लगता है ऐसे कि सारी पोर्टल्स बंद हैं, मगर वो भी वो वाली पोर्टल्स कि जो कि एंटी टू द प्लैनेट की, इंटर जो अर्थ ट्रिजेक्ट्री टेलीपोर्टेशन है उसका तो कोई ऐसा मामला नहीं है। तमीमुद्दारी ने जो पोर्टल में ट्रेवल किया है दज्जाल से मिले हैं, तो वो जो दज्जाल को जो बांधा हुआ था ना, मैं वहां से ये ले रहा हूं कि दज्जाल को जिस जंजीर में बांधा हुआ था, तो इसका मतलब है कि दज्जाल को किसी जुल्करनैन की किस्म की किसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने बांधा, एक माई ने कैसे बांधा एक आदमी को, तो वो कोई ऐसा कोई मामला किया हो उसके साथ। मैं उस तफसील में भी नहीं जाऊंगा वो, क्योंकि फिजिक्स के पूरे फिर लेक्चर खोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि चार्ज को अप एंड डाउन कर चुकी है वो, बहरहाल कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चार्ज यूज हो, क्या पता जंजीर से ही बांधा गया उसको, द पॉइंट इज बांधा तो गया था। तो जब उसने कहा कि ये तीन निशानियां पूरी होंगी तब मैं आऊंगा, तो इसका मतलब है कि तब तक कोई पोर्टल नहीं खुल रही जो कि जमीन पे एंट्री, तो उसने खुद मुंह से बताया कि फरात का पानी चल रहा है, वहां भी तो चल रहा है, हमारे दौर में तो चल रहा है। फिर निशानी ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक फरात या दजला के अंदर से सोने का पहाड़ ना निकल आए, गौर से सुनिएगा, इन दोनों को कनेक्ट करें हम, तो कोई खुश्क होगा, हमने पता कहा है वो तेल निकल आएगा, ब्लैक गोल्ड है, और
नहीं तो सोने का
पानी चूंकि
पानी,
डैम बना देंगे तो ये होगा वो होगा, जो भी हमने निकाला है, सोने का पानी नहीं, सोने का पहाड़,
सोने का पहाड़ है, काले सोने का पहाड़ है, काला
नहीं नहीं
पानी वाला
सोने का
नहीं।
पहाड़ है, बस
सोने
सोने
के
का पहाड़
पहाड़ का जिक्र है।
ठीक,
तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें हम इकट्ठी पजल में देखें तो पता चलता है कि देर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन साइड दिस रिवर, जिसके थ्रू कोई ऐसी चीज होनी है कि वो पोर्टल या उसकी वो जंजीर टूटनी है कि वो री एंट्री करेगा। सो या फिर कोई भी शायद ताल्लुक ना हो इसका, फिर भी उसकी वो री एंट्री किसी और वजह से बंद हो, मगर नजर आता है कि ये एक क्लू है कि, क्योंकि क्लू तो डायरेक्ट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने है ना कि जब तक ये ना हो जाए तब तक दज्जाल नहीं आना, या ये तो दज्जाल ने कहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि दज्जाल उस दौर में फरात का पानी जब या दज्जला में से सोने का पहाड़ निकल आए, तो लोग उसको मतलब वो आपस में छीना झपटी चल रही होगी उसके सोने की, और उसी दौरान दजाली खबर आ जाएगी, اور ساتھ ہی یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دجال کا ظہور اچانک ہوگا. تو یہ اچانک کے کانسیپٹ سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں چاہیے کہ کوئی اچانک پورٹل از امیڈیٹ انٹری نا, سڈن ٹرانزٹ ہوتا ہے. پورٹل کا مطلب کہ چار گھنٹے کا سفر ہے ایئر لائن کا. پورٹل کا تو مطلب یہاں پہ کراس کیا تو کسی اور پلانٹ پہ پہنچ گئے. تو پورٹل کا تو بیسک کانسیپٹ ہی یہی ہے. سو یہ چیزیں اسی طرف اشارہ تو کر رہی ہیں بڑی کلیئرلی کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن وچ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو سڈن. اور پھر حدیث ہے کہ آخری نشانیاں ایسی ہیں جیسے کہ مالا ٹوٹتی اور موتی نیچے گرتے ہیں پید در پید. تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ہوا ہے اور سارا کچھ کھل گیا. پھر جاجوج ماجوج آ گئے دجال کے مرتے ہی, پھر تھا دعوت الارض آ گیا, پھر پتہ نہیں جتنے بھی معاملات کھلنے ہیں, اور پھر پر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو دروازے سارے کھل جائیں گے.
اچھا ایک اور سوال ہے جو کہ آپ نے جو ابھی بات کی اسی سے ریلیٹڈ ہے, دجال کے حوالے سے ہی, کہ ایک تو دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے ٹھیک ہے, تو ابھی ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں اسی وقت میں پیدا ہوگا. اب ہوتا ہے کچھ آنے والے وقت میں ہوتا ہے, تو ظاہر بات ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ ہوگا, ایک فزیکل ایولیوشن سے گزرے گا, تو ظاہر بات ہے سیکھے گا, بولنا سیکھے گا, علم حاصل کرے گا. اس کے پاس یہ علم آئے گا کہاں سے جو کہ ہم میں سے کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے؟ اگر وہ اس دنیا میں ہی پیدا ہوگا اور اس دنیا میں ہی آگے جا کر اس لیول پہ پہنچے گا, تو یہ پورٹلز کی نالج اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول کرنے کی نالج اور یہ تمام نالج اس کے پاس آئے گی کہاں سے؟ وہ کیسے سیکھے گا؟ ایسا کیا ہوگا کہ یہ سارا چیزیں اس کو پتہ چل جائیں؟ اور دوسری بات جو کہ ایک حدیث ہے جس میں دجال کی عمر کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا.
جی
ہاں, پہلا دن اس کا جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن اس کا جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن اس کے
عام دنوں
جیسے ہوں گے. اور اس کی بھی شیخ عمران نے ایک انٹرپریٹیشن کی ہے کہ وہ شاید کسی دوسری ڈائمنشن میں ہوگا وغیرہ وغیرہ, کہ وہ ایک پس پردہ حکومت کرے گا. تو وہ اس کے مثال وہ 1 سال والے دن ہے, لیکن اس کے کارندے چل رہے ہوں گے جو کہ آج کل کا وقت شامل ہے. وہ اس کو دنیا کے ایرز سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب برٹش رول تھا تو اس وقت جو ہے وہ سال والا تھا, اب امریکن رول آ گیا ہے تو وہ اس کا ہفتے والا مہینے والا چل رہا ہے, اس کے بعد اسرائیل کا رول آئے گا تو وہ 1 ہفتے کا ہوگا, اور پھر جب وہ فزیکلی آئے گا تو وہ اس کا فزیکل ظہور ہوگا. وہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟
آپ نے جو 2 سوال کیے نا, اس میں ایک تیسرا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اچانک ظہور کیسے ہوگا اس کا, یہ بھی ایک بیچ کا سوال ہے.
بالکل.
تو
اسی میں ایڈ کرتا ہوں جو مجھے کنفیوژن ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا وہ ایک ٹائم لائن سے جائے گا اور پھر واپس وہ ٹریول کرے گا اور وہاں پہ وہ پھنس جائے گا اور پھر وہ
صحیح ہے. صحیح ہے, میں اسی کا یہی جواب دے رہا ہوں. اصل سوال یہ کہ وہ علم کہاں سے آئے گا اس کا. تو دیکھیں میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا رہا ہوں اس میں, مگر میں دیر ذرا ساتھ ساتھ میں ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو کہ عراق میں سمرہ میں 1940s میں ان کو سمرہ کی تہذیب کی وہ ٹیبلٹس ملی جن کے اوپر وہ پوری لائبریری ملی ہے. 26,000 ٹیبلٹس ملی. 26,000 ٹیبلٹس کا مطلب ہے کچھ 26,000 کتابیں مل گئیں سمجھ لیں. وہ ہے تقریباً 16,000 سال پہلے کی تہذیب. تو اس میں انہوں نے ادریس کا واقعہ اور یہ تمام تر انٹرگلیکٹک تمام تر ٹیلیپورٹیشن, ادریس اوپر کیسے جاتے تھے, کتنی دفعہ جاتے تھے, حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا, یہ سارا کچھ اس میں درج تھا. اس کا مطلب حضرت نوح کے تو بعد کی بات ہے اور ادریس کے تو بعد کی بات ہے. تو جب صدام حسین نے, کیونکہ سمرہ عراق میں, تو صدام حسین کے اوپر ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صدام حسین نے کویت کے اوپر پھر ایران کے اوپر یہ وہ اپنی شیعہ سنی مسائل کر رہا تھا اور عراق کو فتح کرنے کے لیے یہ بہانہ دے دیا گیا, امریکہ کا ایجنٹ تھا وہ, اور بہانہ یہ دیا گیا کہ وہ شیعہ سنی مسائل اور لوکل ڈیٹرنس کر رہا ہے سوشل لیول کے اوپر بھی پولیٹیکل لیول پہ بھی, تو ہم اس کی ٹرینی کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کنسپریسی تھیوری یہ تھی کہ تیل کے لیے کر رہا ہے امریکہ یہ سارا کچھ, تو کیونکہ عراق واقعی میں تیل میں سب سے زیادہ آگے. मगर अजीब सी एक बात है जो कि मैं आपको सबूत से बता रहा हूँ, या आप गूगल करें, ये कुछ सीक्रेट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इराक पे जिस दिन अमेरिका ने हमला किया उसी दिन फर्स्ट 24 आवर्स के दौरान ओपन ब्रॉड डेलाइट के अंदर अमेरिकन आर्मी ने क्या करतूत किए, ये हम सबको पता है। ना सिर्फ वो वीडियोस पे है बल्कि कुछ छुपा सीक्रेट भी नहीं है, उन्होंने माना भी, यहाँ तक कि वो सारे कंटेनर्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुए इसराइल, वो किस चीज़ के थे, वो समर्रा की उन टैबलेट्स के थे। 11 म्यूजियम से 11 के 11 म्यूजियम से अमेरिकन आर्मी ने सबसे पहले आके लूटे। तो जब एक जंग की जाती है तो सबसे पहले वो वाले एसेट को सिक्योर किया जाता है ना जिसके लिए जंग की जाए, और सारे के सारे एसेट्स उन्होंने सिक्योर करके भेज दिए इसराइल। अब वो ऐसी सिक्योरिटी में है जहाँ पे डेड सी स्क्रोल लिखे हुए, प्राइम मिनिस्टर शरोन को भी इजाज़त नहीं थी उस लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए। ये जो लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर है इसने भी इस बारे में बात की कि अगर ये वो होती, मेरी कोई साजिश होती तो मुझे तो एक्सेस होता उनका, वो तो मुझे भी नहीं दे गया। तो जो अजीब सी बात ये थी कि जब इराक फतह हुआ तो सद्दाम हुसैन के घर के अंदर, उसके महल के अंदर जो सद्दाम हुसैन की तस्वीर थी, वो क्या थी कि वो समर्रा के उस तहजीब के उस वक्त के इल्यूमिनाटी से, जो ओरिजिनल इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको फिर आप प्रॉपर सुमेरियन सेशन हमें करना पड़ेगा ताकि मैं आपको तफसील बता सकूँ कि सुमेरिया समर्रा क्या है, क्या लिखा हुआ था, कैसे मुझे पता चला, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या सुमेरियोलॉजी के प्रोफेसर क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी रिसर्च इसके ऊपर काफ़ी है कि मैं इस कंक्लूजन तक पहुँचाऊँ कि दुनिया में इसका फ़ायदा तो बताएं। तो वो मैंने अभी ये देखा कि जो फ़ायदा है ना, वो ये कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जो इराक के सद्दाम हुसैन साहब कोशिश कर रहे थे ना कि उन तक मिल जाए, और प्रॉपर प्रोफेसर्स, खुद पीएचडी करवाता था सुमेरियोलॉजी में, इराक यूनिवर्सिटी के अंदर भी शुरू हो गई थी इसकी ब्रांचिंग, और उसने फैकल्टी क्रिएट की सुमेरियोलॉजी की, ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर आके ट्रेनिंग ले रहे थे और दे भी रहे थे, यूरोपियन अकेडमिया सुमेरियोलॉजी करवा रही थी, और अमरीका और यूरोप आके यूनिवर्सिटी इराक के लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे रहा था कि इनको इंटरप्रेट कैसे करना है इन टैबलेट्स को। क्यों? क्योंकि वो टैबलेट्स फोकस इस बात पे करती थी कि इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कैसे करते थे वो लोग, उन्होंने सिखाया ये था। अब कहानी ये है कि इराक में ऐसी कोई आग लगी हुई थी जिसकी वजह से अमेरिका ने हमला किया, तो उन्होंने सबूत दे दिया कि वो यही आग लगी थी। इराक की कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसराइल बिलीव करता है, इसराइल बिलीव करता है कि सद्दाम हुसैन की आग लग गई है और ये इंटरप्रेट कर लेगा, इसको जल्दी से निकाल। उन्होंने आते ही फिर उसको पकड़ा और उससे वो टैबलेट्स ली और निकाल दिया गया। क्या ये कंस्पिरेसी थ्योरी है? तो नहीं, कंस्पिरेसी थ्योरी तो ये है कि वो तेल के लिए आए थे। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तो आंखों देखा हाल है, अभी भी आप गूगल पर जाएंगे तो आपको वीडियोज अभी भी दस्तयाब होगी जो कि लोकल्स ने बनाई कि करके अरे आर्मी आके सरेआम म्यूजियम लूट लिया आके, और कोई आर्टिफैक्ट नहीं उठाया, कोई आर्ट नहीं उठाई, सिर्फ और सिर्फ सुमेरियन टैबलेट्स आके चोरी की उन्होंने। क्योंकि ये एक मुल्क की इनेट राइट होती है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कोई भी चीज़ वहाँ से मिलेगी, जैसे हमारे पास हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये हमारे पास ही रहेगा, ये इंग्लैंड के किसी म्यूजियम में नहीं जा सकती, उससे कोई ईंट में नहीं जा सकती, तो ये इराक के म्यूजियम में ही रखी हुई थी सारी चीज़। हालांकि इराकी इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे। आपके सवाल के जवाब के साथ इसको इसलिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो वाकयात अजीब और गरीब से हुए हैं इस दौर में। एक, निमरॉड के मम्मी को उन्होंने फ्रेंच पासपोर्ट दे के फ्रांस में लेके गए, उसका डीएनए निकाला प्रजर्वेशन के बहाने, और फिर प्रॉपर उसको उसी तरीके की ट्रीटमेंट मिली इसराइल के अंदर भी, जैसे कि कोई इनका दजाल ही आ गया। और फिर ये सुमेरियन टैबलेट्स की भी उन्होंने इस तरीके से ये मामला किया। क्या ये बातों के अंदर वाकई वो इल्म है जो दजाल को मिलेगा? तो मुझे तो इल्म नहीं है, अल्लाह को इल्म है खाली, मगर एटलीस्ट कोशिशें उनकी इसी लेवल की हैं। इनकी कोशिशें यही हैं कि ये पोर्टल टेलीपोर्टेशन इंटरगैलेक्टिक जो मामलात हैं वो तय कर सकें, और ये जो उलूम हैं अगर ये नहीं भी सही तो एटलीस्ट उनकी नीयत तो नज़र आ रही है कि क्योंकि जिस जिसने भी सुमेरियोलॉजी के बारे में पढ़ा है उसको ये पता है कि ये जितने भी मामलात हैं ना जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, बाइबल में, इथियोपियन बाइबल में और कुरान पाक में लिखे हैं, ये सब कुरान पाक का भी पूरा रेफरेंस चार्ट मिलता है। सुमेरियोलॉजी कुरान पाक में भी वैसे ही फोकस करती है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर ने प्रॉपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनकी मेराज के ऊपर पूरे थीसिस लिख के बताया है कि कैसे मोहम्मद ने ट्रैवल किया था। सुमेरियोलॉजी के PhD ने ये बात की है, कोई मुसलमान नहीं है वो, बट वो इस साइंस को मानते हैं वो, और उन्होंने पूरी की पूरी ये तफसील जो है ये रिकॉर्ड कराई। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसराइली के पास गया ये सारा, ये सही है या गलत है तो एक अलग बात है, एक मिनट के लिए सोचें कि ये सही है तो फिर दज्जाल की तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो क्रिएट हो गया, और अगर ये गलत है तो एटलीस्ट उनकी नीयत तो पता चल गई है कि वो यहाँ से ही इसी तरीके की मामला करने की कोशिश करते हैं, और दज्जाल के पास इसी तरह का कोई इब्तदाई और आला तालीम की जो अकेडमी है वो इसी इसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर है।